नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम छूलो आसमान में आज आपसे रूबरू होंगी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र राज्य की प्रवक्ता इमेजिन एक्सपी और फॉर्च्यून कुकीज जैसी कंपनियों की संस्थापक श्रीमती श्वेता शालिनी। उनसे बातें करेंगे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टरसेन।
आज हमारी बातचीत होगी श्वेता शालिनी जी से। इनके इतने किस्म के काम हैं कि हम इसमें अभी नहीं जाएंगे, बात करते करते आप समझ जाएंगे। श्वेता जी, वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो।
थैंक यू
फॉर बीइंग विद अस।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
सबसे पहले ये बताइए, आप आर्मी चाइल्ड थे तो आपके फादर आर्मी में थे, कहाँ स्टेशन थे?
आपके प्रश्न को पहले ठीक करती हूँ,
बताइए।
आर्मी चाइल्ड थी नहीं, आर्मी चाइल्ड हूँ
अभी भी
और आर्मी चाइल्ड ही रहूंगी। देखिए, इस जीवन में यदि एक चीज निरंतर चलती रहती है तो वो बदलाव है। एक आर्मी एक ऐसी संस्था है जो आपको इस बदलाव को अपनी जिंदगी में कैसे ढालना है और अपने आप को बदलाव के लिए किस तरीके से तैयार रखना है ये सिखाती है। आर्मी एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पर आपको मिलेगा कि एक बिहारी एक सिखलाई रेजिमेंट में लड़ेगा और एक सिख एक उड़िया बिहार रेजिमेंट में लड़ेगा और ये दोनों देश की सीमा पर
साथ लड़ेंगे
और ऐसे एक व्यक्ति की जान बचाएंगे जो कि केवल मात्र भारतीय है, जिसका कोई धर्म नहीं, कास्ट कलर क्रीड उसका कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई रंग नहीं। ये चीज आपको आर्मी सिखाती है और ये मुझे आर्मी बैकग्राउंड ने दिया। मेरे पिताजी ने हमेशा कहा करते थे कि मेरी जात मेरा धर्म मेरी वर्दी है और ये ओलिव रंग है और एकमात्र चीज जिसके लिए हम जिंदा हैं वो ये है कि हमारे देश की शान जो है वो हमेशा ऊपर रहे। तो यही जज्बा यदि आपके अंदर आ जाए या आपके बच्चों में आ जाए तो आपका जीवन सफल हो जाता है।
नॉर्मली तो आर्मी के बच्चे फिर आर्मी में ही चले जाते हैं, क्योंकि आप महिला हैं इसके लिए नहीं गए या आपका कुछ ना ध्यान और ही कुछ था?
नहीं, ऐसा है विकास जी, आप ये देखेंगे कि अधिकतर आर्मी के बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसमें अव्वल दर्जे का कार्य करते हैं और वो हर जगह सफल रहते हैं और उसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बहुत सारे आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे आर्मी में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपनी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर हो जाए ये जज्बा बचपन से उनके अंदर रहता है। हाँ, हमने कोई और तरीका ढूंढा है अपनी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर करने का।
ये तो आप कर ही रही हो, हम देख ही रहे हैं। इंडिया में ना बहुत ही स्मॉल परसेंटेज आर्मी में जाते हैं। इजराइल के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वहाँ पे तो 100% कंपलसरी एनलिस्टमेंट है
जी।
और वहाँ का तो उनका तो जो लाइफ स्टाइल ही अलग है
जी।
वो जो बिजनेस भी करते हैं वो आर्मी की तरह चलाते हैं
जी।
तो डू यू नॉट थिंक कि ना इंडिया में भी ऐसा कुछ करना चाहिए?
देखिए ऐसा है,
ये बहुत ज्यादा लोग हैं इंडिया में।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा है, हर देश की अपनी जरूरत है। हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे देश को इजराइल जैसी जरूरत नहीं है। आर्मी में जाना या ना जाना चॉइस का प्रोफेशन है हमारे लोगों के लिए और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। लेकिन मैं इस बात पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, एक सैनिक जान देकर देश की सेवा करता है लेकिन एक चौकीदार भी अपना कर्म करके देश की सेवा करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को देश की सेवा करना आवश्यक है। आप चाहे किसी भी और देश में देखिए, इजराइल ही नहीं, चाहे आप अमेरिका में देखिए, चाहे आप इंग्लैंड में देखिए, लोग अपने देश के लिए कार्य करते हैं, लोग सोशल सर्विस करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, अपनी कम्युनिटी समाज के लिए काम करते हैं। एकमात्र हमारा देश है जहां पर आप सोच के बताइए कि आपने आज अपनी दिनचर्या में 24 घंटे में कितना समय अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए दिया। और आप ये प्रश्न आपके जितने गेस्ट आते हैं उनसे पूछिए,
आगे सब पूछेंगे जरूर। थैंक यू
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी एक गाने के लिए रुकेंगे, आपकी कोई फरमाइश है?
किशोर कुमार जी मेरे फेवरेट हैं, आप किशोर कुमार जी का कोई भी गाना सुना देंगे तो वो मेरी चॉइस हो।
एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई सावन की सुनी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी, डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
आप ग्रोइंग अप इयर्स में
जी
कितने घर बदले, कितने क्षेत्र बदले?
मैंने 9 स्कूलों में पढ़ाई की है।
हाँ,
और 7 अलग अलग राज्यों में पढ़ाई की।
अमेजिंग।
सो आप ये समझ सकते हैं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा भगवान किस रूप में आएंगे आपके सामने ये पता नहीं है, इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रेम दो, इज्जत दो, उनका आदर करो। ये हमें ये कल्चर, ये वैल्यू सिस्टम आर्मी से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम 7 राज्यों में मैंने पढ़ाई की है, उन लोगों के साथ उठी बैठी हूँ, उनको अपना फैमिली माना है, अपना परिवार माना है। और आज भी यदि आप देखें तो मैं बिहार की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश की बहू हूँ, और महाराष्ट्र राज्य में रहकर राजनीति करती हूँ, और महाराष्ट्र राज्य के लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं।
आप तो टेलीविजन पे भी दिखाई देती हैं कई बार, स्पोक्स पर्सन है इसके लिए।
मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, इसलिए अक्सर आप मुझे टेलीविजन पर देखते होंगे। मेरा कार्य है कि मैं अपने पार्टी का स्टैंड लोगों तक पहुँचाऊँ। हमारे सरकार में रहते हुए हमने बहुत उम्दा काम किया है, और हमारा ये कार्य है एक प्रवक्ता होते हुए अपनी आइडियोलॉजी, अपने पार्टी की सोच, अपने डिसीजन और अपने काम हर एक क्षेत्र में हर एक लोगों तक पहुंचाए। और उनके लिए हम अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो एक माध्यम है।
अर्ली एज में, स्कूल में, कॉलेज में ऑलरेडी एक एक्टिविस्ट तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक्टिव हो गए थे, तो उसी टाइम से दिखने लग गया था कि आपके आसपास के लोगों को, मैंने और भी लोगों के ये देखे हैं आपके बारे में, कि ये कुछ मतलब पॉलिटिक्स में जाने वाली हैं, लेकिन आप तो क्यों हुआ है इससे, क्या था आपके अंदर, वही आर्मी बैकग्राउंड?
देखिए ऐसा है, नेतृत्व आपके रगों में लहू बनकर दौड़ता है, यदि आपके अंदर जज्बा हो तो आप उसे पहचानते हो और उसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में करते हो या किसी भी क्षेत्र में करते हो। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में शुरुआत से, मुझे मुद्दे उठाने का बहुत, मैं गर्व से इनफैक्ट कहती हूँ कि गलत मुझसे सहन नहीं होता है, तो यदि कोई बात गलत है या मुझे गलत लगती है तो मैं उसे बहुत दृढ़ता से ये बात कह सकती हूँ कि ये गलत है, और सही करने की जो शक्ति है वो मेरे अंदर है। तो इसीलिए नेतृत्व लीडरशिप का रूल है कि जो व्यक्ति और लोगों को ये साहस दे सके कि जो आप सोचते हो, टू टॉक योर माइंड, जो आप सोचते हो यदि आप वो बोल सको। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और यदि आप इस फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकते हो, यदि आप खुल के सोच सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, तो आप बहुत बहुत ज्यादा इस देश के लिए काम कर सकते हो। तो यही नेतृत्व तो मैंने अपने अंदर समझा बहुत अर्ली एज में, मुझे ये बात समझ में आई। मैं एक बहुत अच्छी वक्ता थी, जब कॉलेज लाइफ में ही नहीं स्टूडेंट लाइफ में भी मैं एक अच्छी वक्ता थी, और उस समय से भी मुझे ये समझ में आया कि मेरे नेचर में, स्वभाव में, लोगों से मिलना, लोगों का दर्द समझना, लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, लोगों से कनेक्ट करना, ये बहुत आसानी से मेरे अंदर आता है।
तो आप चल पड़े और सब साथ साथ आगे चले गए साथ में।
बिल्कुल सही फरमाया।
तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए। हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
नहीं तो चराहों से लो जा रही थी, तुम आ गए हो।
मजे जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो
नूर आ गया।
अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे
जी,
आपके पॉलिटिक्स में थोड़ा बाद में आएंगे
जी।
आप काफी बिजनेसेस भी चलाती हैं
जी,
तीन या चार बिजनेस चलती हैं आपकी, क्या क्या है ये? आईटी कंपनी है, कुछ और है, तीन चार चीजें पढ़ी थी मैंने।
अच्छा, तो बहुत साफ शब्दों में यदि कहें, मोदी जी ने एक नारा दिया डिजिटल इंडिया का। मेरे पास कुछ कंपनियां हैं जो किसी भी क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन के लिए आपकी मदद करते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। यदि आपको डिजिटलाइजेशन करना है तो हमारी कंपनियां आपकी मदद करेंगी, चाहे वो क्षेत्र स्मार्ट सिटी का हो, चाहे एकेडमिक्स का हो, चाहे डिजाइन का हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो। तो इनमें जो डिजिटलाइजेशन आ जाता है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन माध्यम में जा सकते हैं, किस प्रकार से पोर्टल्स कर सकते हैं, किस प्रकार से आप ह्यूमन और मशीन, मनुष्य और मशीन का इंटरैक्शन कर सकते हैं, ये बनाना डिजाइन करना इनकी कंपनियां हैं मेरे पास। इस क्षेत्र को यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कहते हैं। खासकर ये बताना चाहूंगी कि आज इस क्षेत्र के अंदर लगभग हर साल 1.5 लाख नौकरियां निकलती हैं, लेकिन इस भारतवर्ष में आज हम केवल मात्र कुछ हजार, कुछ 15,000 लोग ऐसे तैयार करते हैं जो कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हैं। तो हमारी कंपनी ने आज कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके, जैसे चितकारा यूनिवर्सिटी, देहरादून यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मुंबई में, इन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके ऐसे कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो स्किलिंग में आपको इस चीज की मदद करते हैं कि किस प्रकार से आप डिजिटलाइजेशन करने में आप सहयोगी हो सकते हैं, किस तरीके से आप रोजगार इस क्षेत्र में ढूंढ सकते हैं। तो हम इसी क्षेत्र में हैं, और कुछ कंपनियां हैं जो ये काम करती
हैं। कुछ और भी सुना है मैंने कि है ना, 2014 के जब नेशनल इलेक्शंस थे, और सुना ही नहीं, मैंने देखा है
जी
कि आपने सारा सोशल मीडिया गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र का आपने करा था, पूरा एसएमएस बोलो, फेसबुक, सारे जितने जो भी सोशल मीडिया आजकल है, इट वॉज ऑल रन बाय योर कंपनीज।
एक चीज बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, मेरा कार्य क्षेत्र, मेरी कंपनीज और मेरा सोशल क्षेत्र बिल्कुल अलग है। मेरी कोई भी कंपनी एक भी सरकारी कार्य नहीं करती है। हमारे पास लगभग एक कंपनी में 400, दूसरी कंपनी में 200, 300 लोग हैं। हर एक कंपनी केवल मात्र बाहर के देशों में जितनी कंपनियां हैं उनको केटर करती है। मैं समाज सेवा के लिए, मेरी फैमिली ने मुझे आउटसोर्स कर दिया है, क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा था कि अब मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे समाज के लिए कुछ कार्य करना है। और इसीलिए मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिले, ये सोचते हुए मैंने 2014 में और उससे पहले छलांग लगा दी और अपने आप को समर्पित कर दिया इस बात से कि, और एकमात्र ध्येय के साथ कि मोदी जी को प्रधान सेवक बन जाना चाहिए। और आज प्रधान सेवक के रूप में वो 4 साल से हमारे साथ हैं, और आप देख रहे हैं कि कितना उम्दा काम कर रहे
हैं। जो चल रहा है पूरे देश को बदल दिया या बदल देंगे आगे चलते चलते।
जी, एक और चीज कहना चाहूंगी, कोई भी कार्य जो आपने, इलेक्शन, हम एक लोकतंत्र हैं और इसका ये जो जुनून है, ये कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो इसमें हजारों लोग जुड़े और हर एक आम व्यक्ति जुड़ा, एक हर एक यंग यूथ जुड़ा, तब जाकर ये बदलाव आया है। और हाँ, मेरा छोटा सा एक योगदान रहा है, मैंने यूथ को जोड़ने के लिए बहुत काम किया और इस चीज का नेतृत्व भी किया, लेकिन अकेले व्यक्ति से कभी कुछ नहीं हो सकता।
सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे हर माह हमारे पल के नमूदे कैसे देखें सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा किस अजनबी से आए करें अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन के आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सा
सोने सरंग लेके निकली है आसमां से एक नदी किरणों की
आ साथ मेरे चल चल बादलों में चल भर के उड़ाने आसमानों में
गोल्ड खरा सोना
मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा के तू हंस के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा तो
देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर दिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए
आप अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रैवल कैसे करते हैं टू पुट इट इन अ बेटर वे मैं तो देखता हूँ कि एक दिन पुणे में हैं एक दिन दिल्ली हैं किसी दिन कहीं और हैं जब भी मैं ट्राई करता हूँ कई बार फॉरेन में तो चले जाते हैं तो फैमिली कैसे चलती है आपके तो छोटे बच्चे हैं
जी मेरे मेरे जुड़वा बच्चे हैं दो लड़के हैं 11 साल के और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं अपने दोनों अपने स्कूल के फुटबॉल टीम में हैं क्रिकेट खेलते हैं मेरा एक बेटा अभी कोडिंग करने लगा है इनफैक्ट
अच्छा,
कल उन्होंने अपना पहला पेटेंट के ऊपर एक वाइट पेपर लिखा है
अच्छा,
मेरा दूसरा बेटा फुटबॉलर बनना चाहता है देखिए ऐसा है बच्चों को क्वालिटी टाइम चाहिए होता है आप उनके साथ मौजूद रहें और फोन पे रहें या टीवी देखते रहें तो वो बच्चों के साथ होना नहीं माना जाता इसलिए जरूरी है कि आप और मेरा अपना मानना है देखिए फौज हम फौजी बच्चे हैं फौज में पिता बाहर रहते हैं दूर रहते हैं सीमा पर रहते हैं लेकिन सारे बच्चे बहुत उम्दा करते हैं बहुत सफलता लेते हैं वो क्यों लेते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन इज देयर आप बच्चों से बातचीत करते हैं हम निरंतर अपने बच्चों से बातचीत करते हैं और आज टेक्नोलॉजी का युग है कोई भी किसी से दूर नहीं है मेरे बच्चे टेक्नोलॉजी से हमेशा जुड़े रहते हैं फेस टाइम है व्हाट्सएप है SMS है
आप अभी पॉलिटिक्स में तो पूरे तरीके से नयांतरण है
जी
पर वो आए कैसे पॉलिटिक्स में व्हाट ब्रॉट यू इन एंड व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप
देखिए ऐसा है मैंने आपको बताया कि एकमात्र जज्बा जो शायद
देश के लिए कुछ करना है
मुझे यहाँ लेके आया देश के लिए कुछ करना देखिए ऐसा है जब आप फैमिली चलाते हैं मेरी माँ ने दो बहुत ही कामयाब बहुत ही अच्छे देश के नागरिक बनाए ये उनका कंट्रीब्यूशन है हर माँ का कंट्रीब्यूशन होता है कि वो अपने बच्चों को देश के लिए समर्पित करती है अच्छे नागरिक बनाती है ये फैमिली का कंट्रीब्यूशन है मैं एक एंटरप्रेन्योर बनी मैंने अपनी कंपनी सेटअप की मैंने कुछ लोगों को रोजगार दिया ये भी एक प्रकार का समाज के प्रति हमारे देश के प्रति एक कंट्रीब्यूशन है लेकिन जब मेरे मन में आया कि मुझे समाज में और कुछ करना है अपने देश के लिए कुछ करना है और इम्पैक्ट लाना है जब आपको लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट लाना है तब आपको एक पोजीशन ऑफ पावर में जाकर ये समझना पड़ेगा सही पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी सही सोच लानी पड़ेगी सही दिशा में ले जाना पड़ेगा और आज शायद यही सोचकर मैं राजनीति में घुसी क्योंकि राजनीति में नीति छुपी है और ये नीति का ज्ञान मुझे है और मैं समझती हूँ कि एकमात्र इंस्पिरेशन मेरे जैसे हर युवा का रहा है वो है मोदी समझिए 67 साल का एक युवा निरंतर लगभग 20 घंटे हर रोज काम करता है उस देश के लिए जिसमें शायद वो अगले 20 साल रहेगा, लेकिन आप और हम अगले 40 साल 45 साल रहेंगे, ताकि अगले 15 साल में हम गर्व से कह सकें कि ये भारत सुपर पावर बनने वाला है और हमने इसे बनाया है। ये जो सोच है, इस सोच के कारण मैं आज राजनीति में आई।
चलिए एक और किशोरदा का गाना सुन लेते हैं, फिर आगे आपसे और बातचीत करेंगे।
जी
ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए बरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आंखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन।
ये तो पूछ लिया कि आप पॉलिटिक्स में आए कैसे, लेकिन अभी तो आप गवर्नमेंट के सेंटर पे आ गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सीएम के साथ बहुत क्लोजली वर्क करते हैं, उनकी काफ़ी पॉलिसीज आप टेलर करते हैं, टेलर तो नहीं बोलूँगा मैं, नॉट द राइट वर्ड, लेकिन हम उनको असिस्ट करते हैं अगेन ग्रेटली ऑन द सोशल मीडिया साइड. सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद द सीएम?
इसमें भी आपको थोड़ा प्रश्न को मैं करेक्ट करना चाहूँगी.
प्लीज प्लीज डू दैट.
सीएम साहब एक बहुत ही, यदि आप देवेंद्र फडणवीस जी को जानते हैं तो एक बहुत ही सफल यंग और डायनेमिक सीएम उनको कहा जाता है. एक्सट्रीमली डिसाइसिव, बहुत ही जल्दी निर्णय लेते हैं. और जिस प्रकार से मोदी जी का एक सपना है भारत को लेकर, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस जी का सपना है कि इस पूरे देश में महाराष्ट्र को कैसे नंबर एक राज्य पे ले जाया जाए. इस सपने से हम सब जुड़े हैं. इस सपने में किस प्रकार गांव को जोड़ा जाए, ग्राउंड लेवल काम किया जाए, तो मैं उनके एक इनिशिएटिव को आज उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी. उन्होंने 1000 गांव दत्तक लिए हैं. और दत्तक लेने का अर्थ क्या है, उन्होंने हर 1000 गांव में एक 20 से 25 साल का एक युवा लड़का या लड़की वहां भेजा है जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर उनको रिप्रेजेंट करता है. उसे ग्राम परिवर्तक कहते हैं.
फीडबैक
वो इन 1000 गांव में रहता है एंड ही इज अ कैटलिस्ट टू चेंज. मतलब ये बदलाव लाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को वो स्टर करता है, वो उसका नेतृत्व के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है. और हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को टेलर किया है. और पहली बार देखिए, हमें ये समझ में आया जब हम सत्ता में आए कि बहुत सारे मंत्रिमंडल हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के,
ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉब्लम ये है कि ये अकेलेपन में काम करते हैं. दे वर्क इन साइलोस. तो इनका कन्वर्जेंस, इनको एकत्रित होकर किस प्रकार से सबसे कम समय में मैक्सिमम इम्पैक्ट लाया जाए, ये कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया. उन्होंने एक टीम का गठन किया, एक कैंपेन तैयार किया. उस टीम का नाम विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन है, ग्राम परिवर्तन संस्था. और इसके तहत उन्होंने केवल मात्र गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट्स को भी जोड़ा. जितने कॉर्पोरेट्स जो आप जानते हैं, चाहे टाटाज हों, चाहे महिंद्रा हो, चाहे अंबानीज हों, चाहे जिंदल्स हों, जितने लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे नीचे ग्राउंड लेवल पे, गांव गांव में जाकर पानी लाने के लिए, इन सब को जोड़ा. और इसके साथ कुछ संस्थाएं जैसे एनजीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब को जोड़ते हुए अगले 1.5 साल में इन 1000 गांव में ये पूर्णतः बदलाव लाना चाहते हैं. और इस कार्य को मैं इसका नेतृत्व करती हूँ. मैं इस संस्था विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ. और हमारे साथ मुझसे ज्यादा आपको ये समझना जरूरी है कि हर गांव में एक बच्चा है. जब हमने पहली बार 250 बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए जब एडवर्टीजमेंट निकाला, जब हमने पेपर में
2 लाख एप्लीकेशन आ गएंगे,
तो हमें 200 बच्चों के लिए लगभग 6000 एप्लीकेशंस आए.
ओके,
6000 एप्लीकेशंस आए. लेकिन आप समझिए, ये 6000 एप्लीकेशंस 20 साल से 25 साल के बच्चों के हैं, जिनको लगभग 2 साल गांव में जाकर रहना है. ऐसे गांव में जहां तक, कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक बस भी नहीं गई. ऐसे गांव में ऐसे लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है और जाने के लिए टॉयलेट भी नहीं है. लेकिन ये बच्चे छत भी बना रहे हैं और टॉयलेट्स भी बना रहे हैं.
एक और गाना सुन लेंगे.
कह दूं तुम्हें
हाँ,
या चुप रहूं
ना,
दिल में मेरे आज क्या है.
क्या है?
कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है. जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है.
अच्छा?
कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है. जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है.
Thank you. बताओ
हाँ।
सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है।
फिर आपके थोड़े पॉलिटिक्स से जरा हटके
जी
और जगह चलते हैं
जी।
आपने अवार्ड्स बहुत जीते हैं या मिले हैं आपको
जी,
तो काफी बड़ी लिस्ट है, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो दो चार आप बता दीजिए।
देखिए ऐसा है, मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, बहुत पहले डिजिटलाइजेशन के ऊपर एक अवार्ड मिला। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, सबसे बड़ा अवार्ड जब मैं इन गाँव में जाती हूँ और जब एक बूढ़ी महिला आपका हाथ पकड़ के ये बोलती है कि आपके कारण या मुख्यमंत्री जी के कारण हमारे यहाँ आज बिजली है, हमारे घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जब वो रोती है कि मेरा बच्चा मर रहा था लेकिन आपके लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसको अस्पताल तक पहुंचाया, या आपके लोग टेलीमेडिसिन लेकर हमारे गांव तक पहुंचे, दैट इज द रियल अवार्ड। वो जो अवार्ड है वो आपको कोई अवार्ड, कोई लोहे का एक पीस नहीं दे सकता है। इस अवार्ड के लिए हर एक व्यक्ति जिंदा रहना चाहिए।
आपकी एक संस्था है
जी,
सरायु आरती
जी,
ये इसका नाम मैंने कभी सुना नहीं था, ये अयोध्या में है ये सरायु रिवर पे है
जी,
क्या है एग्जैक्टली
तो, जी मैंने आपको बताया कि मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ और मेरा घर, मैं अयोध्या निवासी हूँ और हमारा परिवार राम भक्त रहा है, मैं खुद भी बहुत बड़ी राम भक्त हूँ और इसलिए शायद भाजपा से जुड़ी हूँ, क्योंकि राम राज्य का सपना हम सब ने देखा है, हमारे दिलों में राम बसते हैं। अयोध्या में बहुत लोग राम मंदिर ढूंढने आते हैं, अयोध्या के कण कण में राम बसे हैं, लेकिन सरयू नदी जो अयोध्या के बगल से बहती है, अयोध्या के बीचों बीच बहती है, उसमें राम के चरण लगे हुए हैं और ये बैंक्स ऑफ सरयू जो है ये एक ऐसी जगह है जो उतनी ही पवित्र है जितनी रामलला का दरबार है। तो हमने सोचा, हमारा परिवार सरयू किनारे बसता है, हमारे बड़े भैया हैं उनके माध्यम से हमने वहां पर, जिस प्रकार बनारस की आरती होती है और हरिद्वार में आपने गंगा जी की आरती देखी होगी, वैसे हमने सरयू जी की आरती की शुरुआत की। और इस बार हमारा अहोभाग्य है कि योगी जी भी सरयू आरती करने गए थे और आपके माध्यम से मैं सारे कॉर्पोरेट्स से बोलना चाहूंगी, सारे लोगों से बोलना चाहूंगी कि जितनी बार वो अयोध्या जाएं सरयू जी की आरती जरूर करें। हमारा अंजनेय फाउंडेशन नाम से हम आरती करते हैं और इस तरीके से हम सरयू नदी को भी पवित्र रखते हैं, स्वच्छता बना के रखते हैं, बैंक्स को भी साफ रखते हैं और हमारे लिए राम की सेवा हो जाती है।
वेरी गुड, वेरी नाइस
जी।
आपका एम्बिशन क्या है फ्रेंड? अभी तो बहुत यंग हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, आपने क्या सोचा है 10 साल बाद, 20 साल बाद अब क्या रहेंगे और कहाँ रहेंगे?
देखिए ऐसा है, कुछ सोचा नहीं है, लेकिन भगवान जो नैया चलाता है वो सबसे अच्छी नैया चलती है। लेकिन इतना है कि जब मेरे पोते परपोते हों तो ये बोल सके कि मेरी दादी परदादी के कारण इतने लोगों की जिंदगियां सुधर गई, इतने लोगों की जिंदगियों में ऐसा असर हुआ, बस यही सोच है और इसी सोच के ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है।
अब लास्ट में आप अपना बता दीजिए जो सबको नहीं पता है, ऐसी क्या चीज है आपकी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है? आपका तो इन्फॉर्मेशन बहुत है पब्लिक में, ऐसी क्या बात है, कोई बात है?
आज के सोशल मीडिया के युग में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, जो छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो अब ऑल इंडिया रेडियो पे हूँ तो ये कह सकती हूँ कि मैं गाना गाती हूँ।
अरे
लेकिन
बताया हमको, अभी गाएंगे गाना?
अभी गाऊंगी एक गाना। हाँ, तो गा सकती हूँ?
हाँ, प्लीज।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद।
अब आप सुन रहे थे श्वेता शालिनी जी को इन कन्वर्सेशन विद विकास मित्रसेन। थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर बिछड़ राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना
100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र राज्य की प्रवक्ता इमेजिन एक्सपी और फॉर्च्यून कुकीज जैसी कंपनियों की संस्थापक श्रीमती श्वेता शालिनी से की गई चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टर सेन की बातचीत।